Ondan sürekli mağuz billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ahmetin hazret. मैं यहाँ तशरीफ लाने वाले साहिबान से एक बात हमेशा कहा करता हूँ कि ये जो हम अपनी महरूमियों का और ज़रूरियात का जिक्र अपने ही जैसे इंसानों के सामने करते हैं तो वो एक तरह से हम अल्लाह का शिकवा बयान कर रहे होते हैं। एक बुजुर्ग गुजरे हैं फजील बिन याद, ये भी कमाल की शख्सियत गुजरे। ये जवानी में डाकू थे और इनका काम ही ये था कि जो काफले चल रहे होते थे तो इन्होंने अपना ठिकाना बनाया हुआ था रेगिस्तान को, तो वहां से गुजरने वाले काफलों को लूटते थे। ग्रोह काफी बड़ा था, लेकिन बावजूद डाकू होने के इनमें अजीब चीज ये थी कि अगर काफले में खवातीन हैं तो उनको कभी नहीं इन्होंने लूटा। न सिर्फ ये कि लूटा नहीं बल्कि उनकी तरफ देखते ही नहीं थे। तो रेगिस्तान में एक टेंट लगाया हुआ था उसमें, और दूसरी बात ये थी कि नमाज रोजे के बड़े पाबंद थे बावजूद डाके डालने के। इनका गिरोह, उन्होंने एक काफले को रोका, उसमें एक मालदार आदमी था, तो उसने सोचा कि डाकू आ रहे हैं, ये मेरे तो अशरफियां हैं मेरे पास, लूट लेंगे। तो चुपके से एक तरफ वीरानी की तरफ हो गया और ये सोचा कि मैं ये अंगड़ा खोद के निशानी रख देता हूं, उसमें दफन कर दूंगा गढ़े में, और जब डाकू चले जाएंगे आगे निकाल लूंगा। तो वीराने की तरफ गया तो उसने देखा एक टेंट है और उसमें एक नौजवान आदमी टाट का लिबास पहने हुए है और वो नमाज पढ़ रहा है। तो इसने सोचा कि ये नेक आदमी है, यहां वीराने में अल्लाह की याद में बैठा है, तो मैं अपना माल इसके पास अमानतन रखवा देता हूं। उसने कहा कि जी मेरा माल अमानत के तौर पर रख लें तो मैं थोड़ी देर के बाद आके ले जाऊंगा। तो उन साहब ने इशारा किया कि ये कोने में रख दो, वहां ये रख के चला गया। तो काफले वाले को, काफलों को लूट रहे थे डाकू, इसके पास था कुछ नहीं। डाकू ने पूछा, इसने कहा जी मेरे पास तो कुछ नहीं है, खाली हाथ हूं। लूट के चले गए डाकू। तो थोड़ी देर के बाद इसने सोचा कि अब काफला रुखसत होगा यहां से, तो मैं अपना माल ले आऊं जो अमानतन रखवाया था। जब ये वहां पहुंचा तो इसकी तो जान निकल गई, पता लगा कि वो टाट पहने हुए आदमी उन डाकुओं का सरदार था। तो उसको परेशानी हो गई कि मैंने तो अपने हाथ से ही इनको माल दे दिया। तो इतनी देर में उस आदमी की नजर इस पे पड़ी, वो अपने साथियों में माल तकसीम कर रहा था लूट का। तो इसको आवाज देके कहने लगा कि जहां तुम अमानत रख गए थे वो वहीं पड़ी है, जाके उठा लो अपनी अमानत। तो वो हजरत फजील बिन आदि थे, डाकू के सरदार। तो इनको एक आदमी मिला जिसने बड़ी साफ गोई से इनसे कहा कि फजील ये बताओ कि ये तुम नमाज के इतने पाबंद हो, रोजे के इतने पाबंद हो, अमानतदार हो, इन सब चीजों का राजधानी से क्या ताल्लुक है जो तुम डाके मारते हो। उन बुजुर्ग की बात क्या इनके दिल पे असर हुआ, वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ कि इन्होंने तौबा कर ली और अल्लाह की याद में लग गए। हारून रशीद बहुत शौक रखते थे औलिया कराम से मिलने का। तो एक बार वो हज पे गए तो हज से फारिग होके अपने मसाहब से उन्होंने कहा कि यहां अगर कोई वली अल्लाह रहता है तो उससे मैं मिलना चाहूंगा। तो वो मसाहब इनको एक साहब के पास ले गए, मिले, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की उन बुजुर्ग ने। तो उठते हुए हारून रशीद ने कहा कि अगर आप पर कोई कर्ज हो तो मुझे बता दें, मैं वो कर्ज आपका अदा कर देता हूं। तो उन्होंने कहा हाँ, मेरे मुझ पर ये कर्ज है। हारून रशीद ने अदा कर दिया और अपने मसाब से कहा कि अगर इनसे बड़ा कोई वली अल्लाह हो तो मेरी मुलाकात उससे करा दो। वो एक और साहब के पास ले गए, उनसे मिले, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बातें की इनके साथ। तो हारून रशीद बड़े इंप्रेस हुए और उठते हुए उन्होंने पूछा कि अगर आपके जिम्मे कोई कर्ज है तो मुझे बताइए, मैं अदा करवा दूं। तो उन साहब ने भी बता दिया कि फला फला जगह मैं मकरूज हूं। तो हारून रशीद ने पे कर दिया। तो फिर अपने मसाब से कहा कि इनसे बड़ा कोई वली अल्लाह हो तो मुझे मिलवा दो। तो उन्हें हजरत फजील बिन आयाद याद आ गए। कहा आइए, गए तो बैठे थे अपने इबादत में मसरूफ। हारून रशीद ने सलाम किया, बैठ गए वहां, इनसे बात बात हुई, चलने लगे। तो फिर वही पूछा, इन्होंने जवाब दिया कि हाँ, मेरे ऊपर कर्ज तो है लेकिन वो कर्ज ऐसा नहीं जिसको तुम अदा कर सको, वो मुझे को अदा करना है कि मुझ पर हकूकुल्ला कर्ज है अल्लाह का, तो वो तो तुम अदा नहीं कर सकते, वो मैं ही करूंगा। तो हारून ने कहा कि नहीं, मैं तो इस दुनिया के कर्ज का पूछ रहा हूं। तो जवाब क्या दिया, उन्होंने कहा कि मैं अपनी दुनियावी जरूरियात तुम्हें बता के मैं तुम्हारे सामने अपने रब का शिकवा क्यों बयान करूं। तो उस पर फिर हारून रशीद ने चलते हुए 1000 अशरफियां इनको दी कि ये आप रख लीजिए अपनी जरूरत को। तो उसको लौटा दी कि जाके किसी जरूरतमंद को दे दूं, मैं मेरा रब मेरे लिए काफी है। तो मैं आपसे यही अर्ज किया करता हूं हमेशा कि ये जो हम एक बात कहते रहते हैं कि सब फला काम नहीं हुआ, मेरी फलां जरूरत पूरी नहीं हुई, अल्लाह से इतनी देर से मैं दुआ कर रहा हूं वो दुआ नहीं सुनता मेरी, तो मेरे नजदीक ये रब का शिकवा है जो होना नहीं चाहिए। ये जो दुआओं के सिलसिले हैं कि दुआ मांगता हूं पूरी नहीं होती, अगर कभी हम इसको इस लाइन पर सोच लें कि दुआ का सुनना न सुनना, दुआ का कबूल करना न करना, दुआ का पूरा करना या न करना, तीन चीजें हैं दुआ के, तीन मराहल हैं, दुआ का सुना जाना, दुआ का कबूल करना और दुआ को पूरा कर देना। यह हक रब का है, हमारा नहीं है। ये इसको कभी इस लाइन पर सोचिए, कुरान में जैसे रब ने कहा कि मैं दुआओं को सुनने वाला हूं, मैं दुआएं कबूल करने वाला हूं, इसी तरह दुआ का पूरा करने वाला भी रब है। अब वो मर्जी का मालिक है, वो दुआ सुने न सुने, दुआ कबूल करे न करे, दुआ पूरी करे न करे, उसको कोई पूछ नहीं सकता। ये कुलियतन उसका हक है। तो जब मैं ये कहता हूं कि रब ने मेरी फला दुआ नहीं सुनी या फला दुआ पूरी नहीं की, तो मैं कर क्या रहा हूं? ये बहुत बारीक नुक्ता है, इस पे गौर कीजिए। इसी तरह हम गैर महसूस तरीके पर अननोइंगली शिर्क कर देते हैं। हमारे ईमान के मुताबिक राजिक सिर्फ और सिर्फ रब है, लेकिन हम जाते हैं, मैं जाता हूं किसी दुआ करने वाले साहब के पास, तावीज देने वाले साहब के पास, और जाके मैं कहता हूं साहब किसी ने मेरा रिस्क बांध दिया, जब रब ऑल टाइम पावरफुल है, कादर मुतलिक है, तो ये कैसे मुमकिन है कि मेरा रब मुझे कोई चीज देना चाहे और कोई इंसान उसे रोक दे? तो अगर रब के देते हुए हाथ को कोई नाउजुबिल्ला रोक सके, तो अल्लाह मुझे माफ फरमाए इन अल्फाज के लिए, तो हम उसको क्या बना रहे हैं, उस शख्स को? तो शिर्क नहीं तो क्या है? हमें अपने आप को इन चीजों से रोके रखना चाहिए। अगर मेरे रब मुझे कोई चीज देना चाहेगा तो सारी दुनिया मिलके भी रोक नहीं सकेगी उसे, और अगर वो नहीं देना चाहेगा तो सारी दुनिया मिलके भी मुझे दिलवा नहीं सकती वो चीज। ये काम सिर्फ और सिर्फ मेरे रब का है और वो मर्जी का मालिक है। चाहे किसी को कितना ही दे दे, चाहे किसी को कुछ भी ना दे, कोई पूछ नहीं सकता उससे, ना उसे कोई मजबूर कर सकता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी बदल देंगी। अगर ये चीजें समझ में आ गईं कि मेरा रब बेहतरीन रज़ाक है, वो बेहतरीन राज़िक है, वो मुझे पालता है, तो गम खत्म हो जाते हैं। अगर ये चीज मेरी समझ में आ गई कि मेरा रब मेरी बेहतरी चाहता है हर हाल में, तो मेरे गम सारे खत्म हो जाते हैं। फिर न ये फिक्र है कि रात का खाना मुझे कहां से मिलेगा, न ये फिक्र रहती है कि बच्चों की फीसें कौन देगा, न ये फिक्र रहती है कि मेरी तरक्की कब होगी, कहां होगी, कैसे होगी, ट्रांसफर कहां होगी। सब गम खत्म हो जाते हैं कि मेरा रब बैठा है, वो लुक आफ्टर कर रहा है, सही टाइम पर सही चीज मुझे अता कर देगा, और वो कर देता है। तो अगर ये समझ में आ गया और इस पे पूरा यकीन हो गया हमारा, तो फिर जिंदगी में कोई गम नहीं है, फिर इंसान मजे करता है। ये एक साहब ने पूछा है कि क्या साहिब अम्र वली अल्लाह लोहे महफूज में दर्ज तकदीर तकदीर मुअय्यन को भी बदल सकता है, क्योंकि साहिब अम्र तो जो कह दे अल्लाह उसे पूरा कर देता है और उसकी लाज रखता है। बिल्कुल ये दुरुस्त है कि जो साहिब अम्र हैं, रब ताला उनके कहे हुए अल्फाज पूरे कर देता है, उसकी इज्जत रख लेता है। लेकिन ये मत भूलिए कि इख्तियार कुलियतन रब का है। साहिब अमर क्या बेचता है रब के सामने, उसकी हैसियत क्या है, ये उसकी मेहरबानी है कि जो साहिब अमर कह दे वो पूरा कर देता है। लेकिन ना साहिब अमर का यह हक है कि रब उसे पूरा करे, और ना जिसके लिए कहा गया उसका कोई हक है। रब की मेहरबानी है। तो बाज़कात होता यह है कि साहिब अम्र अव्वल तो कोई ऐसी बात कहता ही नहीं, वो रब ताला से ही डरता रहता है। लेकिन अगर कोई ऐसी बात कह दे जो मसलहतों के खिलाफ है तो नहीं पूरी होती। और अकराम के बारे में एक बात याद रखिए, जो रब को पा लेता है, रब को पा लेने से मुराद ये है कि उसकी दोस्ती हासिल हो जाती है, तो उसकी जुबान बंद हो जाती है। ये जैसे मैं ये कहा करता हूं कि जो आलिम हैरत तक जा पहुंचा और उसने अपनी जुबान बंद न की तो मकाम खो देता है। आलिम हैरत ऐसा मकाम है जहां इंसान की जुबान बंद हो जाती है। इसी तरह जिसको रब की दोस्ती हासिल हो गई उसकी जुबान बंद हो जाती है, जुबान नहीं खोलता अपनी। इनका सवाल है कि रूहानियत में अक्सर मुशाहदे हक और मुशाहदे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तलाहात इस्तेमाल होती हैं, तो अगर आप मुनासिब समझें तो वजाहत फरमा दें कि मुशाहदे हक में क्या कुछ आता है। बात यह है कि जब इंसान रब का हो जाता है और वो हर वक्त उसका दिल अपने रब की तरफ रजू रखता है तो रब ताला उसकी इस रियाजत को कबूल फरमा के इनाम अता करता है कि अपने कारखाने कुदरत के कुछ थोड़े से हिस्से को देखने की इजाजत दे देता है। इसके अंदर भी हमेशा एक चीज याद रखिए, ये बुनियादी नुक्ता है रूहानियत का, कि इंसान को बगैर कहे ये यकीन रहे, उसकी सेकंड नेचर में बन जाए कि जो कुछ है वो सब मिन जानिबे अल्लाह है, इंसान के अपने इख्तियार में कुछ नहीं है और मेरा रब अपनी मर्जी का खुद मालिक है, कोई उसको किसी बात के लिए मजबूर नहीं कर सकता। मालिक है, मेरी रियाजत को मेरी इबादत को वो कबूल फरमाए ना फरमाए उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन चूंकि बड़ा रहीम व करीम है तो जितना मैं उसको पुकारूंगा वो उसका इनाम उससे कहीं बढ़कर देगा जो मैं डिजर्व करता हूं। तो जब इजाजत दे देता है रब अपने कारखाने कुदरत के एक हिस्से को, थोड़े से हिस्से को देखने का, तो इंसान जब अल्लाह की कुदरत पर गौर व फिक्र में और मुशाहदे में मसरूफ रहता है तो मुशाहदा हक है। वह ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुशाहदा हक के अल्फाज से इंसान धोखा खाए कि वो रब को देखता रहता है, वो कुदरत इलाही के मुशाहदे में मसरूफ होता है। जिस तरह से गौर व फिक्र रब की जात पर नहीं होना चाहिए, रब की कुदरत पर होना चाहिए, कि अगर हम रब ताला की जात पर गौर व फिक्र शुरू कर देंगे तो भटक जाएंगे, इसलिए कि वो अक्ल से इतना मावरा है कि इंसान गुम हो जाएगा उन भूल भलाइयों में और खो जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगी कि क्या है। लेकिन उसकी कुदरत पर गौर फिक्र करने से नुक्ते खुलते जाएंगे और हम रब के करीब होते चले जाएंगे। इसी तरह जो मुशाहदे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उसका मतलब हरगिज ये नहीं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका को देख रहे हैं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की जो रूटीन थी, जो मामूलात थे जिंदगी के, हम उसका मुशाहिदा करते हैं ताकि हमें सबक हासिल हो जाए और हम उस सुन्नत पर अमल कर लें। उससे बहुत से उकदे खुल जाएंगे। ये मुख्तसर मैं इसका ये अर्ज कर रहा हूं ताकि समझ जाए। ये एक इन्होंने कोट किया है जनाब अब्दुल अजीज दबाग साहब के फरमान को, मायने रखे हुए है ये अपने अंदर, इनका फरमान के वली का इरादा ही तमाम अमूर में तसर्रुफ करता है, इससे क्या मुराद है। मैं अक्सर और बेहतर एक बात अर्ज करता हूं आपसे, औलिया किराम ने जो कुछ फरमाया है वो उन्होंने अपनी उस वलायत के दर्जे पर फायज होने से जो इल्म तक रसाई हुई है उस इल्म की रोशनी में उनके फरमुदात हैं। जैसे हम दुनियावी तौर पर अगर बात करें तो हम ये कहते हैं कि हर इंसान अपनी लियाकत के मुताबिक ही गुफ्तगू करता है, या हम ये कहते हैं कि हर इंसान दूसरे को वही कुछ दे सकता है जो उसके पास खुद मौजूद है। कि अगर मेरी जेब में 100 रुपीज हैं तो मैं एट बेस्ट आपको मैक्सिमम 100 रुपीज ही दे सकता हूं कि मेरे पास कुल है ही वो। इसी तरह जब कोई वली अल्लाह बात करता है तो वह अपने इल्म और अपने मकाम के मुताबिक बात करता है, काबिलियत जो उसकी है इल्मे लुदूनी में वो उसके मुताबिक गुफ्तगू करता है। ये जो जनाब हजरत अब्दुल अजीज दबाग साहब ने फरमाया है कि वली का इरादा ही तमाम अमूर में तसर्रुफ करता है, ये असल में मकाम है। आपको याद आ जाएगा एक 2-3 मरतबा यहां दुआ के सिलसिले में अर्ज की के दुआ के दर्जात, उसकी कबूलियत के क्या क्या है। मैंने अर्ज किया था कि एक मकाम वो होता है कि जब इंसान सजदे में गिर के गिड़गिड़ा के अल्लाह के हजूर दुआ करता है तो दुआ कबूल होती है। इससे अगला मकाम ये आता है कि अल्लाह के हजूर हाथ उठा दिए दुआ की और दुआ कबूल हो गई। इससे अगला मकाम आता है कि जुबान से कह दिया तो रब ताला ने मेहरबानी फरमाई वो पूरा हो गया। उससे अगला मकाम ये आता है कि आंख का इशारा कर दिया तो रब ताला ने मेहरबानी कर दी और वो दुआ कबूल कर ली और दुआ कर दी। उससे अगला मकाम आता है कि इंसान ने सोचा और रब ताला ने पूरा कर दिया, ऐसा मेहरबान हो जाता है रब। ये आप देखिए मुख्तलिफ लोगों के पास आप जाते रहते हैं, दुआ करने वालों के पास, वहां आपको एक एक्सपीरियंस होगा। कुछ लोग हैं बहुत लंबी पढ़ाई करके फिर आपको फूंक मारेंगे तो आपकी दर्द बंद हो जाएगी, बल्कि इससे भी पहले कि एक ही काम के लिए कई बार गए उसने पढ़ पढ़ के फूंके मारी कई बार तो फिर कहीं जाके ठीक हो गया बंदा। उससे अगला मकाम ये है कि उसने पढ़ा एक बार फूंक मारी बंदे की बीमारी छोटी मोटी ठीक हो गई। फिर एक मकाम पर आदमी चला जाता है कि उसने सिर्फ कह दिया कि यार तुम ठीक तो हो गया, क्यों रो रहे बैठे, तो बंदा ठीक हो गया। उससे अगला मकाम यह आता है कि जहां वो बैठा है आप वहां गए तो आपकी छोटी मोटी बीमारी वैसे ही चली गई, दर्द बुखार ये सब। उससे अगला मकाम यह आता है कि जिस कमरे में वो बैठता है वो नहीं भी है, आप उस कमरे में दाखिल हो गए तो छोटी मोटी बीमारी चली गई। इसी तरह ये दुआ के मामलात हैं। तो फकीर जब एक चीज का इरादा करता है, सोचता है उसके बारे में, तो रब ताला इतना मेहरबान है, वो लोग जिनको वो अजीज रखता है अपने करीब करता है उन पर ऐसी रहमत फरमा देता है कि वो सोचते हैं और रब ताला वो काम कर देता है, उसकी रहमत है वो। तो सोच से जो काम हो जाए वो तसर्रुफ कहलाएगा कि इंसान वली अल्लाह का इरादा ही तसर्रुफात में से है। ये है इनका मतलब. ये खुद चूंकि इस मकाम पर थे कि उधर सोचा उधर काम हो गया, लेकिन सोचते कमी है फिर ये लोग. ऐसी बात, वो सोचते हैं तो रब की कुदरत के बारे में, वरना तो ये हो जाएगा कि जिधर को देखेंगे काम हो गया तो फिर जूते पड़ जाते हैं. ये अगला सवाल असल में इसी का एक हिस्सा है जो उन्होंने अलहदा से लिख दिया है कि अल्लाह के दोस्त अपने पास आने वालों को बाज़ औक़ात जब कोई काम करने को कहते हैं तो बज़ाहिर इस इंसान में इस काम की इस्तादाद, सलाहियत और काबिलियत नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद वो इस काम को कर लेता है. ये क्या किस्सा है? दर हकीकत जब कोई अल्लाह का दोस्त किसी इंसान को कहता है जाओ तुम ये काम कर लो, हो जाएगा, तो काम करने वाले की सलाहियत नहीं है वो, बल्कि उस काम को तफवीज करने वाले के तसर्रुफात काम कर रहे हैं. ये उसी से मुताल्लिक है पहले वाले सवाल से कि तसर्रुफ उस आदमी का है जो काम पर लगा रहा है आपको. तो इसीलिए वो कोई फकीर अगर कह दे मुझ जैसे शराबी कबाबी इंसान से जिसका काम ही गुनाह करना है कि जाओ उसको दम कर दो वो ठीक हो जाएगा, तो मैं दम कर दूंगा वो ठीक हो जाएगा. अब जो आदमी ठीक हुआ उसको तो ये नहीं पता कि भेजा किसने था, और कह जी लो शाह साहब ने दम किया ठीक हो गया, शाह साहब बड़े पहुंचे हुए हैं, वाह वाह मेरी हो गई. लड़के तो फकीर के तसर्रुफात हैं जो इस्तेमाल हो गए. क्या ये दुरुस्त है कि शैतान का सबसे बड़ा हरबा ये है कि वो मुरीद को शेख से बदज़न कर दे, जिक्र अज़कार में कमी हो तो शेख उसका अजाला कर देते हैं, लेकिन अगर मुरीद अपने शेख से बदगुमा हो जाए तो शेख उसका अजाला नहीं कर सकते, ऐसा क्यों? ये तो शायद मैं ना कह सकूं कि शैतान का सबसे बड़ा हरबा ये है. शैतान का सबसे बड़ा हरबा तो यह है कि इंसान को नेकी से दूर ले जाए. मुरीद शेख से बदज़न होता है, उससे दूर होता है. उसके पीछे दो वजूहात हैं. जब यहां मुरीदी के आदाब और पीरी के आदाब पर बात हो रही थी उस वक्त भी मैंने इसका जिक्र किया था, हमारे बदज़न होने में ज्यादा रोल एक बात बल्कि दो चीजें रोल प्ले कर रही हैं. एक तो यह है कि हम बहुत जल्दी करते हैं किसी के हाथ पर बैत करने में. गए थोड़ा सा इंप्रेस हुए वहीं बैठे बैठे कहा जी मुझे बैत कर लीजिए. अब चूंकि हमने परखा तो होता नहीं, देखा नहीं होता, तो कल को जब हम वहां जाते हैं और हमारी सोच से मुख्तलिफ वहां कोई बात होती है या वो चीजें जो हमें पसंद नहीं वो वहां होती हैं, तो हम बदज़न हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं. तो इसका इलाज मैंने यही अर्ज किया था कि बैत करने में जल्दी मत कीजिए, बल्कि वहां जाते रहिए कसरत से और खामोशी से चीजों को ऑब्जर्व करते रहिए. तो 4-6 महीने जाने के बाद जब आपका दिल मुतमईन हो कि यहां कोई खिलाफ शरा काम नहीं होता, यहां कोई खिलाफ सुन्नत काम नहीं हो रहा, फिर बैत कर लीजिए, बदज़न नहीं होंगे आप. दूसरी जो बड़ी गलती करते हैं, जो इससे भी बड़ी गलती है, वो ये है कि हमने किताबों में जो पढ़ा और लोगों से जो सुना, हम अपने जहन में एक शेख का एक खाका बनाते हैं. वो खाका कुछ इस तरह का होता है कि जो हमारे शेख हैं वो इंसान नहीं है, कोई सुपर ह्यूमन चीज है, जबकि हैं तो वो इंसान। कोताही और गलती उनसे भी होगी तो उससे हम हर्ट होंगे और पिछड़ जाएंगे। लेकिन अगर हमने ये सोचा कि हमारे शेख तकवा में बहुत अच्छे हैं, इल्म में बहुत आगे हैं, लेकिन हैं इंसान, तो जब उनसे कोई हम गलती होती देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये इंसान ही इनसे कोताही हो गई, तो वजन नहीं होंगे। इसी तरह हम शेख से तवक्को ये लगाते हैं कि जो कुछ वो कह देगा वो हो जाएगा, जो दुआ वो करेगा वो दुआ पूरी हो जाएगी, हमारी जरूरतें नाउज़ुबिल्लाह ये पूरी कर देंगे, हमारी हिफाजत नाउज़ुबिल्लाह ये कर देंगे। ये सब बातिल ख्यालात हैं। ये सिर्फ रब है जिसको ये सजावार है कि जो कहे, जो चाहे, जो सोचे वो हो जाए। किसी इंसान को नहीं है। इंसान बहरहाल रब ताला का मोहताज है, वह रब के हजूर अर्ज करेगा। रब की अपनी ग्रेटर स्कीम ऑफ थिंग्स है, बाज़कात वो बात उसमें फिट नहीं हो रही होती, वो नहीं होती पूरी, लेकिन किसी और जगह कंपनसेट रब कर देता है। दुआ का जैसे मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज किया, यह हक अल्लाह का है कि वो सुने, कबूल करे, पूरी करे या ना करे, ये उसका हक है। वो मर्जी का मालिक है, वो सुने ना सुने उसको कोई कुछ कह नहीं सकता। तो आपके शेख भी इंसान है, मोहताज हैं अल्लाह के, तो उन्होंने भी अल्लाह ही के हजूर अर्ज करनी है। रमड़े सुनता वो क्या कर सकते हैं आपके शेख। हिफाजत करने वाला सिर्फ रब है, सिर्फ और सिर्फ रब है, उसके अलावा कोई हिफाजत करने वाला नहीं है। आपके शेख तो खुद मोहताज हैं अल्लाह की हिफाजत के, तो वह आपकी हिफाजत क्या करेंगे। मुश्किल कुशा सिर्फ रब है, आपके शेख नहीं है, वो इंसान है, मोहताज आदमी है। तो जब हम अपने शेख को इस मयार पर रखते हैं, इंसान होने के मयार पर, और हम अपने जहन में क्लियर हैं कि यस हमारे शेख को, हम पर ये फजीलत हासिल है कि वो साहिब इल्म है, साहिब तक्वा है, अल्लाह के मुकर्रबीन में से हैं, वह हम पर फजीलत है उनको, लेकिन इंसान है, तो एक इंसान की जो लिमिटेशंस हैं, एक इंसान की जो मजबूरियां हैं वो उनकी भी हैं, तो फिर हम बदजन नहीं होंगे। बदजनी हमारे अपने रीजन से आती है। ये अगला सवाल है कि कुतुब इरशाद की तरह कुतुब वादत भी क्या वलायत का कोई दर्जा है? क्या ये दुरुस्त है कि कुतुब वादत की ड्यूटी को फर्शर का जोर तोड़ना और मिल्लत इस्लामिया को मजबूत व वसी करना है? बात यह है कि आप इसको किसी तरह भी नाम दे दीजिए चीजों को, बात वही रहती है कि जो अल्लाह के दरवेश हैं, अल्लाह के फकीर हैं, वली हैं, कभी आप उनको देखिए। मुझे कल एक साहब ने बड़ी मजे खूबसूरत बात कही, वो मुझे जाती तौर पे तो बहुत उनकी वो बात अच्छी लगी। किसी साहब का कोई मेरे ख्याल दानेश्वर हैं, कराची में शायद रहते हैं, तो उनका जिक्र कर रहे थे कि एक दिन उन्होंने मुझे टेलीफोन किया तो कहने लगे कि मैं एक साहब से लाहौर में अलामा इकबाल टाउन में मिला था कोई 35 साल पहले, तो वो मेरे कोई बैग गुम हो गया था जिसमें जेवर बहुत था, तो उन साहब ने मुझसे कहा कि साहब जेवर तो मिलेगा नहीं, उसको तो भूल जाइए, लेकिन और जो उन्होंने बातें की वो बड़ी मजे की थी और सबकी सब सही थी। कहने लगे अब उनकी किताबें आई हैं मार्केट में, तो मैं ये किताब लेटा हुआ बेड में पढ़ रहा था। अब ये रात को 11-12 बजे के अमल था जब उनकी कॉल आई, तो कहने लगे बस तुम्हारे लिए एक बड़ी बुरी खबर है कि ये जो साहिबे किताब हैं ये देवबंदी हो गए। तो कहने लगे मैंने पूछा कैसे, उन्होंने कहा कि दो चीजें नजर आती हैं, एक तो इन हजरत का जोर तमाम तर जो है वो तौहीद पर है, तो ये देवबंदी और किसी और स्कूल ऑफ थॉट के लोग ही इस पर जोर देते हैं तौहीद पर, और दूसरा ये है कि इन्होंने अपनी गुफ्तगू में कहा है कि मेरे नजदीक कुरान पाक का तर्जुमा फतेह मोहम्मद जालंधरी साहब और मौलाना अशरफ थानवी का बहुत अच्छा है, तो अगर तर्जुमा पढ़ना है तो वो पढ़ लीजिए। कहने लगे ये तो देवबंदी वाली बातें हैं इसलिए वो देवबंदी हो गए। तो कहने लगे वो असल में बड़े अच्छे रंग में बात कर रहे हैं, खुशगवार उसमें तंजिया नहीं थी या कोई। तो कहने लगे मैंने उनसे कहा कि वो देवबंदी कैसे हो गए ये साहब जिनकी किताब आप पढ़ रहे हैं, तो फकीर का तमाम तर जोर तो तौहीद पर होता है। हाँ वो ये जरूर कहता है कि तौहीद तक पहुंचते हैं आप नबूवत के जरिए से, नबूवत वसीला बनती है तौहीद तक जाने का, तो वो पहले अर्ली स्टेज में तो जोर देता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका पर, और उसके बाद वो जोर देता है तौहीद पर। तो ये आपने क्या नई बात कह दी इन साहब के बारे में, ये तो तमाम अलिया कराम यही करते हैं। तो ये आपने भी वही पूछा कि कुतुब वहदत, अगर कोई वली अल्लाह है तो वो तौहीद पर यकीन रखता है, वहदत पर यकीन रखता है, उसके बगैर वली नहीं बनेगा वो। तो आप उसको कुतुब इरशाद कह दीजिए, उसको कुतुब वहदत कह दीजिए, उसको कुछ कह दीजिए आप, लेकिन हर वली अल्लाह तौहीद पर जोर देता है। तो तौहीद पर जोर देने की निस्बत से वो कुतुब वहदत कहलाएगा। अब इन्होंने एक शेर लिखा और मैं पदाइशी लोहार हूं तो मेरा वास्ता तो हथौड़े से ही पड़ता, तो शेर और शायरी तो बड़ी नाजुक चीज है, इससे लतीफ से ताल्लुक है इसका जो मेरे अंदर है नहीं बिल्कुल। वो शेर ये है कि कोई जाके कह दे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मेरे दर्द दिल की दवा करें, न मेरी नजर से जुदा हूं वो न मुझे नजर से जुदा करें। भाई मेरे मेरी तो यही पहले समझ में नहीं आया, इसलिए मैं शेरों से दूर भागता हूँ कि शेर और शायरी में क्योंकि उन्होंने वजन का ख्याल रखना होता है, रदीफ का ख्याल रखना है, काफिये का ख्याल रखना है, बहर का ख्याल रखना है कि शेर जो है वो वजन में रहे, वो बहर से आउट ना हो जाए, उसका काफिया दुरुस्त हो, उसका रदीफ दुरुस्त हो। तो उस सिलसिले में वो हकीकत से बाज़कत बहुत दूर निकल जाते हैं। फिर शायरी में ये तो खैरियत गुजरी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हुजूर कहा, वहां तो शेर ऐसे भी हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तू कह के मुखातिब किया हुआ है, जो मेरे नजदीक तो गुस्ताखी है। तो इसके अंदर जो मुझसे कोई पूछे तो मैं तो ये कह दूंगा कि भाई ये क्या जुल्म ढा रहे हो कि किसी से कह दो कि कोई जाके कह दे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वहां तो कोई काफिर और मुशरिक भी अर्ज कर देगा तो पूरी हो जाएगी, उन्हें किसी की फरमाइश टाली ही नहीं जाती कहीं में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर तो ऐसा दर है कि कोई मुशरिक कोई काफिर फरमाइश कर दे, फरमाइश पूरी हो गई। तो मैं पागल हूं कि मैं किसी से कहूं कि तुम जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दो कुछ, मैं तो खुद हाथ जोड़ के बैठ जाऊंगा वहां। तो पहली तो यही बात है, कोई क्यों कहे, आप खुद क्यों ना कह दें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर अर्ज कर दें, अर्ज पूरी हो जाएगी। इसी शेर के बाद लिखा हुआ है साहब ने कि अगर ये सवाल खिलाफ अदब महसूस ना हो तो अज़राए करम क्या आप कुछ ऐसा बता सकते हैं कि एक बेमाया के दिल रूह और निगाह से हिजाबात उठ जाएं। आगे कहने की औकात है ना हिम्मत। भाई मैं बार बार एक चीज अर्ज करता रहता हूं कि ये रूहानियत तरीकत इल्मे लुदूनी इल्मे बातनी ये सब एक ही चीज के नाम है। आप लोग सारे मुतासिर हैं उस शेर से, क्योंकि शेर मुझे याद नहीं रहते, अगर मैं उसका तैया पांचा कर दूं तो माइंड ना कीजिएगा। वो क्या नजरे मर्द क्या निगाहें मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, आप लोग उसी चक्कर में फिर रहे हैं। हालांकि यहां कोई 10 बार मैंने एक अर्ज की कि उससे मुराद ये नहीं है कि अगर किसी वली अल्लाह की नजर शाह साहब पर पड़ जाएगी तो शाह साहब वली अल्लाह बन जाएंगे। शाह साहब बड़ी मोटी खाल के आदमी है, वली अल्लाह नहीं बनते। उसका मतलब सिर्फ इतना है कि जैसे अभी मैंने हजरत फजील बिन अयाद उनका जिक्र करते हुए कहा कि एक शख्स ने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा कि ये नमाज रोजा जकात इसका राजनी से कोई ताल्लुक है। मुराद ये थी कि ये सब भी करते हो और राजनी भी करते हो, तो दिल पे असर कर गई बात, छोड़ दिया, डाकू से वली बन गए। अब उनको वलायत के दर्जे तक पहुंचने के लिए कितना लंबा सफर करना तय करना पड़ा वो किसी को नहीं मालूम। तो क्रेडिट यही जाएगा कि वह निगाहें मर्द मोमन से बदल गई थी तकदीर है। ऐसा नहीं है, किसी की भी निगाह इंसान के दिल में गुनाह की हेट्रेट पैदा कर देगी, गुनाह से दूर हो जाएगा, लेकिन फिर नेकी की राह पर चलने के लिए उसको खुद मेहनत करना है। दुनिया का कोई वली अल्लाह उसको वली नहीं बना पाएगा, सब कहानियां हैं। इसी बात को आगे बढ़ाएंगे अगली मरतबा आपका टाइम ज्यादा ले गया मैं। अस्सलाम वालेकुम।